आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वैच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, लक्ष्मी निवास निलयम्, विलीन विलयम्, निधाय हृदिवीरम्, आत्मानुशासनमहम्, वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य जी ने आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखा है और उस पर शुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनके प्रवचन हुए हैं, उस आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 58 पर हम आ गए, 58। यहाँ हमने 10 नंबर का श्लोक पढ़ा था, उसमें ये बात बताई थी कि श्रद्धा दो प्रकार का है, तीन प्रकार का है और 10 प्रकार का है। तो दो प्रकार का श्रद्धा कौन सा देखा याद है? निसर्गजरक अधिगमजरक। निसर्गजर ने उस भाव में किसी की देशना ज्ञानी नहीं मिला, उनको किसी का उपदेश नहीं मिला है, परंतु सर्वथा निसर्गजर होता है, देशना लब्धि तो आवश्यक कंडीशन है। पूर्व भाव की देशना मिली हुई है और वो ज्ञान में वो संस्कार रूप से चलता है तो उसके स्मरण आता है, कहो या वो तत्वों का भाषण होता है और उसको सम्यक होता है, उसको कहेंगे निसर्गजर। अधिगमजर ने उस स्व में उसको ज्ञानी का उपदेश मिला है और उस बाद में उसने तत्व निर्णय किया है। अब तीन प्रकार के जो सम्यक है उसकी बात अपनी चल रही थी, हमने पैराग्राफ पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ क्या कहते हैं कि सम्यक के बाधक जो प्रकृतियां, पेज नंबर है 58। प्रत्यक्ष ज्ञानी, हाँ प्रत्यक्ष, यानी उनका उनके सानिध्य में प्रत्यक्ष डायरेक्ट उनका उपयोग सुनना चाहिए। ये बेंच जी को भी या स्वामी जी को भी प्रश्न पूछते थे कि सीढ़ी चलेगी क्या, टेप चलेगी, तो लेकिन वो टेप वो देशना नहीं कहलाएगी। हाँ ये है कि वो सुनकर आपके पहले मिली हुई है तो उसका स्मरण हो सकता है या उसका, यानी ये अभी काम करती है, यानी आपको ख्याल में आ जाता है, पढ़ने का सुनने का निषेध नहीं है। प्रत्यक्ष बोला इसलिए हो गए, यानी कहलाए, अपने को बताया, ऐसे कहने से थोड़े हो जाते हैं। ये नियम सार में भी आया है, अन्य अनेक ग्रंथों में आता है कि वो प्रत्यक्ष है, वहाँ तो ऐसा भी लिखा है, उनके जो दर्शन मुनि के जो कोई क्षोभ आदि जो पड़ा है वहाँ पर, यानी उसमें तो उनके कर्मों की बात नहीं है, ज्ञानी की। नियम सार में लिखा है ऐसा कि उनके जो मिथ्यात्व का उपशम जो कुछ
है, साढ़े आठ के बाद फोन कीजिए,
तो इसलिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष देखना आवश्यक, वो भी सुनने की कंडीशन बताए, सुनने की
साढ़े आठ के बाद फोन कीजिए,
क्योंकि क्या है कि ये जो पढ़कर ये अपने जो कंफ्यूजन दूर होगा ये बात नहीं है। अभी जिसने पहले सुना है, जिसको मालूम है, अभी जिसको द्रव्य गुण पर है कुछ मालूम नहीं, कुछ पढ़ने जाता है, लौकिक में शब्द वही यहाँ पर होते हैं, तो अपनी जो कल्पना है उसी की पुष्टि करता है जी। तो ज्ञानी के उपदेश में उसको तो पता है कि सामने वाले जीव ने कितना पकड़ लिया है, उसके तो चेहरे से, उसके हाव-भाव से, उसके सभी प्रश्नों से उसके ख्याल में आ जाता है, इसलिए वो ज्ञानी की बात बताते हैं। ये प्रश्न पूछे हम कहाँ ज्ञानी को ढूंढे, अरे हम अपना अभ्यास करें ना, ज्ञानी तो समय में मिल जाएगा। ज्ञानी के आपको आके बताने वाला मैं ज्ञानी हूँ, आप मुझसे सुना, ऐसा थोड़ी होता है। तो सम्यक्त्व के तीन प्रकार देखो, सम्यक्त्व उसमें जो बाधक कर्म है ब्रह्मा आपको मालूम है ना सम्यक्त्व में बाधक कर्म कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार। ऐसे सम्यक प्रकृति उसको सम्यक्त्व में बाधा नहीं डालता है, फिर भी उसको दर्शन मुनि का टाइप है, इसलिए यहाँ सातों को ले लिया है। आप देखो यो चार कषाय और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये तीन दर्शन मुनि है। सात प्रकृतियां सम्यक्त्व में बाधा देने वाली है। सम्यक प्रकृति वैसे देशघाती है और वो सम्यक्त्व में बाधा नहीं देती है, फिर भी उसमें जो कुछ दोष उत्पन्न होता है उसमें ये सातों को पहले ले लिया। इन सात प्रकृतियों का उपशम हो अर्थात ये दब जाए। दब जाए का अर्थ उदय में न आवे। उदय में नहीं आए तो उदीर्णा भी होने का सवाल नहीं, उदीर्णा में भी न आवे। ऐसी स्थिति का निमित्त पाकर औपशमिक सम्यक्त्व होता है। अब यहाँ कर्मों की विस्तार से चर्चा नहीं करनी है हमारे, परंतु वो तो सारे पांच लब्धि पूर्वक के औपशमिक सम्यक्त्व होता है, वो हमने यहाँ अपना अभ्यास हुआ है। अब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है वो किसके होगा? या तो अनादि मिथ्या दृष्टि, उसके पास अनंतानुबंधी चार और मिथ्यात्व एक प्रकृति है, तो पांच का उपशम करेगा। अथवा जिसने सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की उद्वेलना की हो, वो की अलग रखो, ऐसे जीव के, यानी उद्वेलना का अर्थ एक बार सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद मिथ्यात्व में जाता है तो दो प्रकृतियों का उल्टा संक्रमण होता है मिथ्यात्व में। पहले कैसे तैयार होती? सम्य दर्शन हुआ था तब मिथ्यात्व में से अनुभाग घटकर वो तैयार हुई। अब जो वही जीव मिथ्यात्व में जाता है तो इनका अनुभाग बढ़कर मिथ्यात्व रूप हो जाता है, उसको कहेंगे मिथ्यात्व में उसकी उद्वेलना हो गई। तो वो जीव कितने प्रकृतियों का उपशम करेगा? तो पांच प्रकृतियों के उपशम से सम्यक्त उपशम सम्यक्त होता है। इन्हीं सात प्रकृतियों में छह प्रकृतियां तो है सर्वघाती। सर्वघाती का अर्थ होता है उसका उदय हो तो सम्यक्त्व का तो पूरा घात हो जावे। जिन छह के उदय में सम्यक्त्व रंच भी नहीं रह सकता, और एक प्रकृति सम्यक प्रकृति नाम की देशघाती है। देशघाती यानी वो पूरा घात नहीं कर सकती है। वो क्या होता है? उसके कारण सम्यक्त्व में चलमलिन अगाढ़ दोष उत्पन्न करती है, जिसको हम कहेंगे सौक्ष्म सम्यक्त्व या वेदक सम्यक्त्व, उसमें वो दोष उत्पन्न होते हैं। क्योंकि है तो मूल मिथ्यात्व वाली प्रकृति, उसका अनुभाग बहुत अनंत गुना घटकर ये प्रकृति तैयार हुई है। सम्यक्त्व तो चलता रहता है, फिर भी औषमिक या क्षायिक जैसा निर्मल नहीं होता, उसमें कुछ दोष लगता है। ऐसा दोष नहीं कि सम्यक्त्व से छूट जाए, परंतु फिर भी वो निर्मल नहीं है, बस इतनी बात है। इन सात में से छह प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उपशम हो। देखो इसका अर्थ हमको समझना है, क्योंकि यहाँ औपशमिक सम्यक्त्व तो बताना चाहते हैं। तो ये जो तीन प्रकृतियां ना औपशमिक सम्यक्त्व में, तो तीनों ही उपशमित, ये सभी उपशमित हो चुकी थी। यानी जो ये मिथ्यात्व कर्म ऐसे पड़ा था तो पहले उसमें ऐसे अंतर किया जाता है परिणामों के बल से, और ये नीचे के नीचे खिंच जाते हैं और ऊपर के सभी उपशमित हो जाते हैं। उपशमित का अर्थ है वो नीचे अपनी जगह छोड़कर नीचे नहीं आ सकते। तो जब ये जीव यहाँ नीचे के नीचे खत्म होते हैं प्रथम स्थिति के, तो यहाँ उसका औपशमिक सम्यक्त्व तो प्राप्त होता है, और उसी समय यहाँ पे तीन टुकड़े बन जाते मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनती है। ये उसकी पोजिशन है, ये औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है? ये मिथ्यात्व के परमाणु है, सम्यक मिथ्यात्व के निषेक, और ये सम्यक प्रकृति के हैं। ये एक समय ये उदय रूप है, और अन्य जो निषेक है जो उनका उदय रूप जो निषेक है सम्यक प्रकृति रूप होते होते उदय में आता है। अपने रूप से उदय में नहीं आना उसको कहेंगे उदयाभावी क्षय, क्योंकि अपने रूप से उदय में आवे तो सम्यक तो छूट जाएगा, क्योंकि वो सर्वघाती है। तो निकल तो जा रहे हैं, क्षय ने खिर तो रहे हैं, परंतु अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे, इसी का नाम है उदयाभावी क्षय। तो कैसे पड़े हैं? तो भविष्य में तो पड़े हैं, उसी को कहते हैं सद अवस्था रूप उपशम। उदय में नहीं आना, सत्ता में पड़े रहना, इसको कहेंगे वो सेकंड दूसरे निषेक से ऊपर सर्वत्र पड़े हैं। कौन से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदयाभावी क्षय है, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम है और सम्यक प्रकृति का उदय है। यह अनंतानुबंधी में ऐसी पोजीशन है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ भी दूसरे समय से ऊपर सर्वत्र पड़े हैं। चौथे गुण स्थान वाला है तो उदय किस रूप से आता है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से, उसको भी कहेंगे सदवस्था रूप उपशम है। इसलिए मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इन सबका क्या है? सदवस्था रूप उपशम। अनंतानुबंधी के लिए उदयाभावी क्षय कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो हम क्षोक्षम सम्यक प्रघटित कर रहे हैं, वो तो सर्वघाती है, उसका उदय है ही नहीं। बस उसमें कुछ देशघाती का उदय नहीं, अन्य प्रकृतियों का उदय, कौन से? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। तो देखो अभी हम इसको फिर पढ़ेंगे। इन सात में से छह प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय वो उपशम हो। ये उपशम कौन सा वाला? वो गैप वाला उपशम नहीं, सदवस्था रूप उपशम जिसको कहेंगे। अभी ये करना नियोग तो है ही नहीं, इसलिए उन्होंने विस्तार से नहीं लिखा है, परंतु वो है तो सदवस्था रूप उपशम। और सम्यक प्रकृति का उदय हो, ऐसी स्थिति में क्षयोक्षमिक सम्यक तो होता है, इसको कहेंगे क्षयोक्षमिक भाव, क्षयोक्षमिक सम्यक। उन्हीं सात प्रकृतियों का जब मूलतः क्षय हो जाए, इसका मूलतः क्षय होने के लिए पहले क्या होता है? ये जो वेदक समय दृष्टि नहीं, क्षयोक्षम समय दृष्टि, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी उदय में नहीं है, और ये मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो भी उदय में नहीं है, तो वो जीव क्या करता है? तो पहले में पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है, क्योंकि अनंतानुबंधी सत्ता में पड़ा है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेक पड़े हैं, तो उसमें क्या होते हैं? उसके कांडक वगैरह, कांडकों में अमुक इतने अनंतानुबंधी वो उदीर्ण होकर खिर जाते हैं, उसकी निर्जरा होकर या संक्रमण होकर, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण भी होता है और कुछ खिरते भी हैं, इस तरह से वो पूरी सत्ता में से नष्ट हो जाते हैं। एक अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट होती है संक्रमण होके, परंतु ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यदि आगे मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व परम प्रकृति का क्षय नहीं किया तो विसंयोजना करके बाद में फिर पहले दूसरे में आ सकता है जी। तो पहले में पहले उसने इसकी विसंयोजना की तो ये सत्ता में से मिट गया। उसके बाद ये तीन करण परिणाम द्वारा, पहले मिथ्यात्व के परमाणु अन्य दो रूप करता चला जाता है, मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व के भी परमाणु उस रूप करके उसका भी क्षय हो जाता है, और फिर इसके भी कांडक घात होते होते उसका भी पूर्ण रूप से उसका क्षय हो जाता है। तो ये सात प्रकृतियों का क्षय होता है, तब उसको कहेंगे क्षायिक समय दृष्टि। ये तीन भेद निमित्त नैमित्तिक कारण के भेद से भेद किए गए हैं, क्योंकि ये नाम कैसे पड़े? कर्मों की अवस्था के कारण ये नाम पड़े हैं, औक्षमिक सम्यक्त्व, क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। ये प्रतिपक्षी कर्मों की अवस्था के अनुसार, इसलिए कहते हैं निमित्त नैमित्तिक कारण, उसके भेद किए गए हैं। अब सम्यक्त्व का परिचय,
जिनको पता लगेगा
क्षायिक, यानी उसने वो कर्मों का ऐसा क्षय चल रहा है वगैरह, ऐसी कुछ बातें नहीं है, परंतु उसकी उसकी दृढ़ता, उसकी निर्मलता उसके ख्याल में है ना। निर्मलता यानी वो सम्यक्त्व के संबंधी निर्मलता, तो ये मुझे क्षायिक हुआ है ऐसा भले वो नहीं भी जाने, परंतु वो निर्मलता तो उसके ख्याल में आ जाती है, दृढ़ता इतनी हो जाती है उसकी। सम्यक्त्व का परिचय, अब कुछ सम्यक्त्व के स्वरूप पर दृष्टि कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक मायने भली प्रकार से दर्शन, मायने दिख जाना, अपने आप का आत्मा अपने आप के उपयोग में भली प्रकार सही तौर से दिख जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यहाँ दिखने का अर्थ आंखों से दिखना नहीं है, मैं वही बात बताने वाली थी, यानी कोई अंदर ऐसे आंखें बंद करने के देखने की कोशिश करता है वो दिखने की बात नहीं है। आत्मा आंखों से नहीं दिख सकता, किंतु क्योंकि लोग तो उसको देखना चाहते हैं आंख बंद करके, और फिर मानते कुछ प्रकाश दिख गया इसलिए आत्मा दिख गया, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु आत्मा में तन्मय उसमय एक चैतन्य गुण है, उस चेतना के दो प्रकार से भेद है, ज्ञान और दर्शन। उनमें ज्ञान गुण के द्वारा तो यह आत्मा जाना जाता है, ज्ञान गुण के द्वारा जाना जाता है, इन्हें जानने वाला भी ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण का जो जानने रूप परिणमन है वो हर समय हो रहा है और वो हमारा प्रकट लक्षण है, क्योंकि हर जीव को जानने हम समझ रहे जान रहे ये बात ख्याल में आ रही है उसके, ये उसका प्रकट लक्षण है, वो हर जीव में है, इसको स्वसंवेदन भी कहते हैं। तो कहते ज्ञान गुण के द्वारा तो यह आत्मा जाना जाता है और दर्शन गुण के द्वारा यह आत्मा दृष्ट होता है। दर्शन से जैसा सही आत्मा दृष्ट हुआ उसी प्रकार का प्रत्यय हो जाए, श्रद्धान हो जाए कि यह ही मैं हूँ, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अपने आप के सम्यक दर्शन की उपयोगिता। हाँ बोलो। यहाँ तो दर्शन गुण के द्वारा बताया है, फिर भी है तो वही थी श्रद्धा की बात लेना, यहाँ जो सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण की बात आती है। अपने आप के सम्यक दर्शन की उपयोगिता। सम्यक दर्शन यानी यथार्थ दर्शन हुआ ना, उसके आत्मा का यथार्थ परिचय हो गया। जगत के जीवों ने अपने आप को नाना रूप माना है, नाना रूप यानी अनेक रूप माना है, शास्त्र में उसको कहते हैं विश्व रूप माना है, क्योंकि जिस पर्याय में जाया जाता है अपने को वैसा मानता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, अभी मनुष्य बना तो मैं स्त्री हूँ, फिर मैं माँ हूँ, अभी कितने कितने उसके रूप बन जाते हैं। मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, अब मनुष्य हुआ तो धनिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, इतने परिवार वाला हूँ, नाना रूपों से अपने को अनुभव किया है, अपने को वैसा ही मानता चला रहता है, मैं ये मेरा रूप है, मैं इस रूप हूँ। और इन विविध अनुभवों के परिणाम में इस जीव ने अनेक कुयोनियों में जन्म लिया है। जो मैं हूँ सो नाना रूप नहीं हूँ, मैं कुछ भी हूँ एक रूप हूँ। अपने आप सहज स्वभाव से, सहज स्वभाव ने उसका जो कुछ कायमी स्वभाव है, सहज भाव है, मैं जिस किसी भी रूप हूँ एक रूप ही होऊंगा। यानी बाह्य में कोई भी वेश हो, वेश होने पर्याय धारण की हूँ, मेरा तो एक ही रूप है, ये कह रहे हैं, क्योंकि सहज स्वभाव की अपेक्षा देखना है अपने को। वह मैं इसी रूप का ही हूँ, इसका दर्शन निर्विकल्प रूप में होता है। निर्विकल्प रूप में यानी वो विकल्प रहित अवस्था जो है, राग रहित अवस्था है, उसको भेद रहित भी कहते हैं, क्योंकि भेद होना ये विकल्प कहलाएगा। और आत्मा का अनुभव कैसा होगा? अभेद अखंड होगा। इसकी दृष्टि के लिए पुरुषार्थ इस प्रकार का करना चाहिए, अपने आप को यूं निरखे कि मैं अकेला कैसा हूँ, मेरे साथ जो दूसरी चीज का संबंध है उस संबंध को अपने उपयोग से हटा दीजिए। यानी मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, अब ज्ञान के सिवाय जो कुछ यहाँ संयोग में है उस पर से अपना उपयोग हटाना है। वो चीज़ तो पड़ी रहेगी ना, क्योंकि अनेक मिलीजुली बातें वहाँ होगी, ये शरीर भी है, पुद्गल भी है, कर्मों के उदय भी है, उसके भी कुछ कार्य चल रहे हैं, तो मैं तो उपयोग मात्र हूँ। तो कहते अन्य जो चीज़ें हैं उस संबंध को अपने उपयोग से हटा दीजिए। मैं यह भी नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ? ये कर्म और कर्म के प्रभाव रूप ये रागादिक भाव, ये सब मैं नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ? बहुत बार हम कहते हैं आठों कर्मों के उदय में क्या क्या बातें होती है, तो ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान की हीनता होती है। तो ये हीन ज्ञान रूप वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सहज स्वभाव जो ज्ञान स्वभाव है उस रूप में, और स्वभाव में तो कोई लिमिट नहीं होती, यानी परिपूर्ण जो कुछ हुँ? अनंत भी लोकालोक होते तो मैं जानू ऐसे सामर्थ्य वाला मैं हूँ, वो अपने में रखना। ये जो हीन ज्ञान दशा, आप कहेंगे हमारी कहाँ हीन है, हम तो बहुत बुद्धिमान है, तो उसमें यह मैं हूँ मान लिया, उतना ही मेरा स्वरूप नहीं है, पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, इस तरह से आठों कर्मों के उदय पर लगा लेना। दर्शनावरण के उदय में जो कुछ है दर्शन की हीनता है, मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व राग द्वेष है, अंतराय के उदय में पुरुषार्थ की हीनता है, साता साता के उदय में जो सुख दुख के परिणाम होते हैं चीज़ों को देख देख कर, इस रूप भी मैं नहीं हूँ। संयोग रूप तो मैं है ही हूँ ही नहीं, परंतु उनको देखकर जो सुख दुख के परिणाम होते वो भी, उस रूप भी मैं नहीं हूँ। ये इंद्रिय के सुख और इंद्रिय के जो दुख है वो तो मेरे से जुदे हैं, और फिर नाम कर्म से तो शरीर बना है उससे तो मैं जुदा हूँ ही हूँ, उच्च नीच गोत्र से भी मैं जुदा हूँ, तो ये कर्मों के उदय में होने वाले जो कोई भाव है उनसे मैं जुदा हूँ। मेरी स्टाइल में कहे क्योंकि ये कर्म का खाता है खोलना, अपना खाता खोलना, ये दूसरे का जो माल आपके पास है अभी हा? उसको अपना मत मानो, हाँ नहीं तो चोर कहलाएगी। अपना जो कुछ है उसको अपना मानो, तो कहते ये कुछ मैं नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ, ऐसा विचार करना। मैं एक जाननहार पदार्थ हूँ, कि मैं तो चैतन्य इतना ही मेरा स्वरूप है ना, और वो चैतन्य कहने से उसमें आत्मा के सभी गुण आ गए, क्योंकि वो उसका एक लक्षण बताया, और लक्षण के द्वारा हम जब लक्ष्य के पकड़ते हैं तो उसमें पूरे सभी गुण आ जाते हैं, अकेला ज्ञान गुण नहीं आता, अनंत धर्मात्मक पूरी वस्तु आ जाती है। तो मैं एक जाननहार पदार्थ हूँ, जानन देखने का मेरा स्वभाव है, यह मैं प्रतिभासात्मक तत्व हूँ, प्रतिभास कहो ज्ञान कहो चैतन्य कहो एक ही बात है, उस प्रतिभास स्वरूप का अनुभव होना यही तो सम्यक दर्शन है। अभी कैसा अनुभव चल रहा है, रागी द्वेषी अनुभव चल रहा है ना, शरीर रूप अनुभव हो रहा है, ये कैसा अनुभव होगा, ज्ञानमय अनुभव चलेगा। अब सम्यक्त्व में देव मूर्ता व गुरु मूर्ता का अभाव, ये तीन मूर्ता नहीं रहती ना, देखो सम्यक समय देव मूर्ता वो नीचे बताएंगे। सम्यक दर्शन में मूर्ता और रूढ़िवाद का स्थान नहीं है। रूढ़िवाद समझते हैं, रूढ़ी से कुछ क्रिया करते रहते उसके पीछे विचार नहीं करते और मानते यही सही है। हाँ, मूर्ता में कितने ही प्रकार होते हैं, जो यथार्थ देव है सच्चे देव आप्त है उनको न मानकर देव नाम रखकर किसी भी रागी द्वेषी आत्मा की मान्यता रखना, देव नाम रखा उसका है नहीं देव, और जो ये अन्यमतियों की कितने देवों की ऐसी बातें हैं कि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो सब कल्पना की उपज है। वो मैं तो कहती हूँ उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमको निर्माण किया, मैं कहती हूँ इन लोगों ने ईश्वर को निर्माण किया अपने कल्पना में, यानी ईश्वर के भी ईश्वर हो गई है। देखिए देव नाम रखकर किसी भी रागी द्वेषी आत्मा की मान्यता रखना, उसे अपना आदर्श मानना, उसे पालनहार मानना, यह भी मूर्ता है। अब ये लोक में बाहर दुनिया में बताने मत जाऊं, अभी इसी तो लाखों करोड़ों के अपजों की बात वही चल रही है, तो उसके लिए वो मेरा भला करेंगे इसलिए कुछ सोना उसके ऊपर चढ़ाएंगे क्या क्या पैसा, इतना गरीब में गरीब आदमी भी जाके वहाँ पैसा डाल के आएगा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, और वो भी अमुक वहाँ जाऊँगा मैं डालूंगा तो मेरा कार्य हो जाएगा। गुरु जैसे हुआ करते हैं जिनके आरंभ नहीं परिग्रह नहीं, ज्ञान ध्यान और तपस्या में ही जिनके उपयोग लगा है ऐसे जो गुरु है उनका जो कुछ भी स्वरूप बताया है उस स्वरूप को तज कर गप्प मारने वाले, ये लौकिक में जो अभी भी देखा होगा कुंभ मेला में क्या क्या कैसे कैसे वो अन्य मतियों के मानते हैं ना, तो क्या के गप मारने वाले, अफीम गांजा चरस आदि का प्रयोग करने वाले, नाना प्रकार के भेष रखने वाले, चित्त में छल कपट रखकर महंतता रखने वाले जो गुरु स्वरूप से विपरीत स्वरूप वाले हैं, उनको गुरु मानकर पूजना मानना यह भी मूर्ता है। सम्यक
बैलेंस
कितना बैलेंस लिखा है बरा अभी ये तो क्या, ये कुंभ मेला था, कितने कितने क्या क्या दिखाते थे, कोई गुरु नाम के वो कुछ बताते, कितने गले में कुछ डाला है, क्या क्या किया है, माथे पर क्या चढ़ाया है, जटाए कितनी रखते हैं, क्या करते हैं, सम्यक्त्व में लोक मूर्ता का अभाव। लोक में अनेक अविवेक पूर्ण रूढ़िया भी चलती है, रास्ता चलते जाते में कोई पत्थरों का ढेर मिल गया या कोई साधारण चबूतरा सा बना मिल गया, वह देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। हाँ क्या प्रश्न है? हाँ अभी सुनो, ऐसा भी है ना, कहीं पर भी कोई पत्थर को वो सिंदूर लगा देते हो गए उनके भगवान, कोई देहाती पुरुष अपने पुत्र का विवाह करके घर जा रहा हो तो घर जाते जाते करीब 50 नारियल उसके खर्च हो जाते वो नारियल चढ़ा देता है ना कोई भी चबूतरा मिला, कोई भी पत्थरों का ढेर मिला तो उसे देवता मानकर उस पर नारियल फोड़कर चढ़ा देते हैं। कभी मन कच्चा रह जाए या कोई शंका हो जाए तो दिल भी ऐसा भयभीत हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अटपट प्रवृत्ति वह करने लगता है। लोग समझते हैं कि इसे कोई देवता लग गया है, नहीं समझा? नहीं नहीं वो ये आता है ना, कोई देवती देवी आती है ना, ये अटपट कुछ करने लगता है, ये सारे हिस्टेरिकल होते हैं या ऐसे ही साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं सारे, ऐसे कुछ देवी वे भी नहीं आती हमें या कभी फटती में ऐसा। कभी मन कच्चा रह जाए या कोई शंका हो जाए तो दिल भी ऐसा भयभीत हो जाता है, कमजोर हो जाता है कि अटपट प्रवृत्ति वह करने लगता है। वो तो लोगों को अटेंशन चाहिए होता है, वो तो हाँ वो तो स्वयं कमजोर होते हैं बहुत लोग समझ। लोग समझते हैं कि इसे कोई देवता लग गया है, परेशानी मच जाती है। धर्म के ये हमारे जैनियों में भी ऐसे हैं, ये कोई देवता ये पद्मावत या ये ऐसा कुछ चलता लगता है। अरे जिसके मान्यता वो मानेगा ना पद्मावती आई, जिसकी दूसरे देवी को मानने वाला कहेगा वो संतोषी माता आई, क्या कहेंगे वो तो उस आदमी की उपज है। वो जिसको किसी को अभी ऐसा है ना, अभी कुछ चल रहा है समाज में, कोई इकट्ठे हो गए तो वो तो चालू हो जाता है अंदर ही अंदर, और फिर कुछ ना कुछ प्रवृत्ति चलती बैठती है, फिर उसको कुछ लोग आते हैं, कुछ उसको साड़ी दे दो, कुछ ऐसा टीका लगा लो, फिर चले जाते हैं। धर्म के नाम पर पहाड़ों से गिरकर मरे, नदी में गोते लगावे, ये गोते लगाते हैं ना अभी, जलती हुई अग्नि में कूद पड़े, इस प्रकार की अनेक रूढ़ियां धर्म के नाम पर फैली हुई है। ये सती की प्रथा ये क्या है, उसको तो जबरदस्ती धकेलते भी है या कोई स्वयं भी उसमें कूदते हैं। इन मूर्ताओं में समय दृष्टि नहीं फंसता है, वह तो अपने आप में स्थित निज ब्रह्म स्वरूप की श्रद्धा कर लेने के कारण यह जानता है, ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप जिसके प्रकट हुआ है वह तो देव है, और इस ज्ञानानंद स्वरूप के प्रकाश में जो यत्न कर रहा है वह गुरु है। वह मूर्ताओं से रहित होता है, यह ही समय दर्शन की कुछ पहचान है। ये तीन मूर्ताओं से रहित होता है ना, समय दृष्टि की भव भय भीतता, जिसको हम कहेंगे संसार से भयभीत हो, ये संवेग कहते उसको, यानी धर्म में उसकी रुचि होती है और संसार देह के प्रति विरक्ति होती है, उससे वो भयभीत रहता है। समय दृष्टि जीव संसार के संकटों से भयभीत रहता है, राग द्वेष मोह संकल्प विकल्प आदि संकटों को यह नहीं चाहता, यानी बाह्य चीजों की बात नहीं, वो तो अपने में उठने वाले विकल्पों को नहीं चाह रहा है, संकल्पों को नहीं चाह रहा है। राग द्वेष मोह लिया, यानी चारित्र मोह लिया। समय दृष्टि इन बाह्य संकटों से रंच भी भय नहीं खाता है, ये अपने ही राग द्वेष ही उसको उससे वो तो उसको भय है। कोई शत्रु आए, कोई क्रूर जानवर सतावे तो उसका उसे भय नहीं होता है, उसको मात्र गेय मानता है, यह भी एक स्थिति है। यदि इस देह में आत्मीय बुद्धि आ जाए तो उसे वह संकट समझता है, यानी कोई जानवर हो, कोई एक्सीडेंट का प्रसंग हो, देह में हूँ मानता है तो फिर डरना तो स्वाभाविक है। अभी वो स्वयं को चैतन्य स्वरूप मानता है, उसको ना कोई मरण तो होता ही नहीं है, तो वो तो एक ज्ञान का गेय तरीके से रह जाता है। यहाँ पता नहीं, यह भी एक स्थिति है। और देह में आत्मीय बुद्धि आ जाए तो उसे वह संकट समझता है, उसे तो केवल आत्म स्वरूप की आराधना ही चाहिए, अथवा धर्म में उसका अनुराग बढ़ा हुआ है। ये संवेग जिसको कहते संसार देह से तो भयभीत है, उससे विरक्त है, और धर्म में उसका अनुराग बढ़ा है, ये दोनों प्रकार से संवेग को बताया जाता है। जिसको धर्म में अनुराग होता है उसकी पहचान यह है कि धर्मात्मा पुरुषों में भी उसके अनुराग होता है, क्योंकि धर्म तो धर्मात्माओं के आधार से रहता है। यहाँ लिखा है, धर्म धार्मिकों को छोड़कर अन्य कुछ नहीं है। जो धर्ममय जीव है, जिनके धर्म का विकास है, वे ही तो धर्म मूर्ति है। ये बाह्य गुणों की चर्चा चल रही है अभी तक। पहले मैं मूर्ताओं का अभाव बता दिया, अब यहाँ आगे ये आस्तिक्य आदि उसके गुण है ना, आस्तिक्य है, संवेग है, अनुकंपा प्रशम वगैरह वगैरह। वैसे तो चार प्रकार से भी बताते हैं, आठ प्रकार से भी बताते हैं। आठ प्रकार से बताएंगे वो प्रभावना वात्सल्य वगैरह वो उसमें बताते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि का प्रशम गुण 60 नंबर पृष्ठ पर आए हम। प्रशम संवेग, ये समवेग नहीं होता, समवेग होता है, स के ऊपर बिंदी चाहिए, वो को म नहीं लगता। हाँ, नीचे बराबर लिखा, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सम्यक दृष्टि के पहचान के ये गुण है। और इसमें भी कहते हैं कि ये तो सच्चे भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भला जीव है, शास्त्र का अभ्यास करता है, मिथ्या दृष्टि उसके भी ऐसे देखने में आते हैं, परंतु उसका आभास है, वो सच्चा नहीं कहेंगे। तो प्रशम संवेग अनुकंप और आस्तिक्य, ये चार गुण सम्यक्त की पहचान है। ये जैसे ज्ञान दर्शन सुख ये गुण है, वैसे गुण नहीं हो, ये उसके बाह्य लक्षण है। जरूरी नहीं, यानी मिथ्या दृष्टि को भी तत्व ज्ञान का अभ्यास होने पर ऐसे शांति वगैरह ये ऐसे बाकी दिखेंगे, परंतु वो उसके सम्यक तो नहीं कह सकते उसके कारण। ये सम्यक दृष्टि के कहलाएगा। अगर उसका आत्मानुभव है तो ये सच्चे हैं, नहीं तो कहेंगे वो आस्तिक क्या भास है, संवेगा भास है, अनुकंपा भास है, क्योंकि अभी तक सम्यक को नहीं हुआ है। आप जिसको भी सदाचरण है, भला है, शांति है, इतना ही मंद कषाय इतना कहेंगे उसको, और उसके ये गुण नहीं कहेंगे, उसको प्रशम संवेग नाम नहीं दे सकते। ये चार गुण सम्यक की पहचान है। जो सम्यक दृष्टि है उसके प्रशम गुण बरतता रहता है, बरतता नहीं वो तो कायम ही रहता है, यानी उसके ऐसे परिणाम शांतता रहते ही है। कोई जीव अपराध करे, इसे कष्ट पहुंचाए अथवा प्रतिकूल वचन बोले, उसको तुरंत क्षमा कर देता है सकता है, ऐसी उसमें योग्यता होती है। यानी मिथ्या दृष्टि जैसा वो एकदम जिसको के हाँ क्रोधी या तीव्र आवेश में आ जाए, ऐसी बातें नहीं होती। सम्यक दृष्टि के संवेग व अनुकंपा, स्वामी जी हमेशा कहते हैं वो द्रव्यलिंगी है। अभी ऐसा कि उसको कोई वार करे, उस पर कोई जख्म करे और फिर उसमें नमक भी छिड़के तो भी आंखों की कुनी भी लाल नहीं होती, और उसको भी कोई ऐसा क्रोध नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं उससे जबरदस्ती रोका है, यानी उसके परिणाम इतने शांत है। ये हो सकता है शुक्ल रेशा के परिणाम है तो उसके ऐसे बाहर कोई रिएक्शन भी नहीं, ऐसे कषाय भी तीव्र नहीं हो, केवल मंद कषाय हो गए इसलिए उसके ये गुण नहीं कहेंगे। सम्यक दृष्टि के संवेग और अनुकंपा, यह प्रकृतिया प्रकृतिया ने स्वाभाविक रीति से धर्म में और धर्मात्मा जनों में अनुराग रखता है, और किसी दुखित पुरुष को देखकर इसके अनुकंपा जगती है। अनुकंपा किसे कहते हैं? अनु मायने अनुसार, कंप मायने कब जाना, कंप जाना, हाँ कंप ही चाहिए, कंप जाना है नहीं उसको, नहीं कप हुआ कंप ही करना, कंप मैंने कंप जाना, कंप जाना यानी वो स्वयं भी दुखित हो जाता है। दूसरों को दुख है जैसा वह दूसरा अपने दुख में क्लेश मान रहा है, उसके अनुसार कुछ यहाँ भी क्लेश उत्पन्न हो, यानी दुखी जीवों को देखकर इसके भी दुख होता है, बस इतनी बात है। परमार्था कोई जीव किसी दूसरे की मदद नहीं करता, कोई पुरुष मोह से राग से पीड़ित होकर परिजनों की सेवा किया करता है तो करुणा में भी यह बात है कि विवेक के कारण दुखी जीव को देखकर हृदय में वेदना उत्पन्न होती है तो वेदना शांत करने के लिए उनका दुख मिटते हैं। फर्क इतना है कि देखो ये फर्क भी है, मोही जीव भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, फर्क क्या है? यह मोही जीव विषय कषाय में अंधा होकर मोह रागवश परिजनों की सेवा करता है, और विवेकी ज्ञानी पुरुष विवेक बल से जगत के जीवों की सेवा करता है। कि उसको मालूम है कि दुखी क्यों है तो वो तो अपने को अज्ञानवश वो दुखी है, फिर भी जो कुछ उसको दुख मिटने का उनके यथासंभव प्रयत्न भी करेंगे, तत्व भी समझाएंगे। ऐसे तत्व समझाने की पोजीशन नहीं होगी तो उसको जो स्थितिकरण आदि बातें होती हैं, कहीं द्रव्य ने दान देकर, कहीं उसकी कोई आजीविका का साधन बनाकर, जिस चाहे वैसे उसको, या लौकिक भी कोई उपदेश देकर उसको स्थिर करेंगे, क्योंकि स्थिर मन से तो उपदेश ग्रहण करेगा ये तत्व की बात, नहीं तो कहेगा तो जाओ हमको नहीं चाहिए, हमको पहले रोटी दे दो, वो आता है स्थितिकरण में। हाँ बोलो, हाँ उसको विवेक है, सच्चे बुरे की पहचान है, ठीक अठीक की पहचान है, उसको विवेक कहेंगे। वैसे विवेक की वेद ज्ञानी को विवेक ही कहते हैं, और यहाँ विवेक यानी सामान्य जो हम विवेक कहते हैं लौकिक में भी जो हम कहते हैं विवेक से, अपने विवेक से काम करो, वैसा सम्यक दृष्टि का आस्तिक्य, इसमें आस्तिक्य गुण भी है। आस्तिक्य उसे कहते हैं जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना, जो वैसा न माने वह नास्तिक। नास्तिक का अर्थ यह नहीं है कि जो जिस धर्म का है उसे न माने, उसके शास्त्र न माने सो नास्तिक। यह तो सभी कह सकते हैं यह नास्तिक है, पर नास्तिक उसे कहते हैं जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न माने। हाँ, मिथ्या दृष्टि। जैसे कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं मानता है, जो है उसको मानता ही नहीं। आत्मा है तो आत्मा ही नहीं ऐसा मानेगा, उसको उसका अस्थिपना उसका स्वीकार ही नहीं है। जो चीज जैसी है उसके मानता ही नहीं, छह द्रव्य है तो उसका अस्तित्व ही नहीं मानता है, तो उसको कहेंगे नास्तिक है। एक केवल कोई हिंदू है या मुसलमान अपने धर्म को नहीं फॉलो करता वो नास्तिक है, ऐसा बात ऐसी बात नहीं है उसकी।
जनरल रूप से माने रूढ़ी में तो ऐसा ही प्रयोग आता है कि जो भगवान को नहीं मानता
ऐसा ही कहते हैं। यही तो रूढ़ी, ये रूढ़ी नहीं माननी है यहाँ पर। सही क्या अर्थ है ऊपर लिखा है ना, नास्तिक का अर्थ यह नहीं कि जो जिस धर्म का है उसे न माने। यानी वो हिंदू है और वो भगवान को नहीं मान रहा है तो लोग उसको नास्तिक कहते हैं। ये हमारा ट्रांसलेशन किया ना इंग्लिश में, इनके फ्रेंड है मधु जोशी, है ब्राह्मण। तो बचपन से ही उनको ऐसा, वो तो ब्राह्मण हो या अन्य मति हो, जो कुछ है धर्म के बारे में देव के बारे में जो कुछ ऐसी अंधश्रद्धा चलती है हमेशा हर एक की ऐसे, वो जिसको कहते हैं कि हंसी मजाक उड़ाता था अपने ही देवों की, ये क्या है ये क्या है, इसे उनमें जो कोई दत्त जो है वो कैसे उनका जन्म हुआ है, ये गणपति का कैसा जन्म हुआ, इस तरह से। यानी उसको नहीं मानते थे, यानी हंसी मजाक कर सब उसको नास्तिक कहते। और जब उन्होंने जैन तत्व परिचय का ट्रांसलेशन कर दिया, अरे तू इतना नास्तिक और ये ऐसा किया क्या काम। यानी ये लौकिक में नास्तिक कहते कि देव को नहीं माना तो नास्तिक हो गया। यहाँ तो कहते कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानेंगे, तो सच्चे देव को सच्चा देव तरीके मानेंगे, अन्य जो मति कल्पना के देव है उसको नहीं माना तो उसको नास्तिक नहीं कहेंगे, वो तो अस्तिक हो गया, अस्तिक के भाव वाला हो गया। आत्मा है उसे न माने उसे नास्तिक कहते हैं। आत्मा शाश्वत है, जैसे आज इस लोक में है, इस भव को छोड़कर फिर परलोक में भी किसी प्रकार होंगे, पर जो न माने ऐसा उसका नाम है नास्तिक। यानी जो कहेंगे कि वो पुनर्जन्म में होता ही नहीं मानेंगे वो तो नास्तिक हो गए, या हम पहले नहीं थे बस इतना ही जो कुछ है हम है तो नास्तिक हो गए। यह सम्यक दृष्टि जीव आस्तिक के गुण से भरा हुआ है और प्रभु का जो स्वरूप है उसकी ऐसी दृढ़ प्रतीति है जिससे संवेग में, हाँ ये संवेग बराबर लिखना, संवेग में भक्ति में लगे रहने का यत्न उसके रहता है। संवेग यानी धर्म धर्मात्मा के प्रति उसकी जो अनुराग है उसको संवेग कहा। उसे चैतन्य स्वरूप प्रभु की भक्ति के सिवाय अन्य कुछ भोगने में नहीं आता है। प्रभु भक्ति या आत्म ध्यान यानी आत्म विकास की ओर उसका यत्न है। परिवार अथवा अन्य झगड़े उसके दृष्टि में आस्था के योग्य नहीं है। अभी जिस परिवार में है जो यथा योग्य उसके भी ठीक है, परंतु उसमें कुछ उसको बहुत लगाव से कर रहा है इसी भी बात नहीं है। यह सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी आस्था में इस सम्यक्त्व को धारण करता है। आस्था यानी उसकी दृढ़ श्रद्धा जो है। संसार के जन्म मरण इत्यादि के समस्त संकटों को मिटा देने की सामर्थ्य इस सम्यक्त्व में है। सम्यक्त्व में ज्ञान शुद्धि। सम्यक्त्व होने से पहले इस जीव के ज्ञान कुमति ज्ञान, कुशुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान कहलाते हैं, किंतु सम्यक्त्व होते ही उस ज्ञान में शुद्धि आ जाती है और यह सम्यक बन जाता है। ये ज्ञान है वो सम्यक बन जाता है। पहले उसको शास्त्र ज्ञान था, परंतु जब तक उसको सम्यक तो नहीं हुआ था वो सब मिथ्या ज्ञान कहलाता था। ये लिखा है देखो, श्रद्धा से पहले ज्ञान चाहे सही भी हो रहा हो किंतु उसमें दृढ़ता नहीं है, इसलिए वो सम्यक नहीं कहलाता। श्रद्धा होने पर ही दृढ़ता नहीं है, श्रद्धा होने पर भी दृढ़ता नहीं, इसलिए वो सम्यक नहीं कहलाता। देखो देखो, श्रद्धा न होने पर ये कुछ अलग हो गया। देखो, श्रद्धा से पहले ज्ञान चाहे सही भी हो रहा है उसमें दृढ़ता नहीं है, इसलिए वो सम्यक नहीं है। ये बीच वाला वाक्य ही नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद का वाक्य देखो, श्रद्धा होने पर दृढ़ता हो जाती है और वह सम्यक कहलाता है। नहीं, वो नहीं है। श्रद्धा नहीं, सम्यक श्रद्धा की बात है यहाँ पर। ये वाक्य बीच में नहीं चाहिए। देखो, तीसरी लाइन से जो श्रद्धा से पहले ज्ञान चाहे सही भी हो रहा इसमें दृढ़ता नहीं है, इसलिए वो सम्यक नहीं कहलाता। ये बीच का वाक्य नहीं चाहिए। उसके बाद वाला वाक्य देखो, श्रद्धा होने पर दृढ़ता हो जाती है और वह सम्यक कहलाता है। जैसे मिश्री खाने से पहले खूब उसका वर्णन करते जाएं, ज्ञान भी उस मिश्री के बारे में सही है लेकिन दृढ़ता कुछ नहीं है। नहीं समझे, जैसे शक्कर है, किसी ने उस पर पीएचडी भी कर दिया, उसके कैसा है रंग, कितने उसके मिठास, कितने कितने अंश है, कैसे डिग्री है, कैसे तैयार होती है, क्या सब कुछ, पर उसने चखी नहीं है तो उसका शक्कर का ज्ञान कैसा कहे, वो तो थ्योरेटिकल खाली करेंगे। बोला ये उन्होंने कहा कि श्रद्धा के बदले ज्ञान कहो, ज्ञान होने पर भी दृढ़ता नहीं है इसलिए वो सम्यक नहीं कहलाता। ज्ञान तो रहेगा ना, परंतु यानी उस वाक्य की जरूरत ही नहीं वहाँ पर। अभी उन्होंने मिश्री का उदाहरण दिया, अभी लास्ट लाइन, जब मिश्री खाई तो समझ में आया, ओ यो मीठी मिश्री होती है, उसे मिश्री का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है। ऐसे ही आत्मा के संबंध में सब बातें करना जानते हैं, आत्मा के बारे में बातें करते हैं, आत्मा को अनुभव से नहीं जाना है तो उसमें डिफरेंस तो है ना। तो आत्मा के संबंध में सब बातें करना जानते हैं, चर्चा करते हैं, युक्ति लड़ाते हैं, किंतु जो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप जानते हैं, चर्चा करते हैं, युक्ति लड़ाते हैं, किंतु जिनको शुद्ध ज्ञायक स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव नहीं जगा है, उनको यह समस्त ज्ञान अभी कुज्ञान रूप है। फिर भी इसमें नहीं जानते चाहिए, इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। देखो फिर पढ़ते, ऐसे आत्मा के संबंध में सब बातें करना जानते, चर्चा करते, युक्ति लड़ाते, किंतु जो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप नहीं जानते हैं, ऐसा चाहिए ना। यानी ये बीच में वाले हुआ थी या फिर ऐसे रिपीट हो गया है, चर्चा करते युक्ति लड़ाते फिर दोबारा वही बात हुई
कि ज्ञान में है उनको,
वही तो बात है ना। यानी वो तो शास्त्र पढ़कर उसकी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं,
अनुभव नहीं,
अनुभव नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव नहीं हुआ है ये बात। एक किंतु वाली वो जो बीच वाली बात है ना वही रिपीट वैसी, या तो नहीं जानते लिखो या वो निकाल दो। किंतु जिनको शुद्ध ज्ञायक स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव नहीं जगा है उनको यह समस्त ज्ञान अभी कुज्ञान रूप है। देखो अभी मैं पढ़ती हूँ सुनना, एक लाइन ही निकालना। ऐसे ही आत्मा के संबंध में सब बातें करना जानते हैं, चर्चा करते, युक्ति लड़ाते, किंतु अभी वो आगे वाला किंतु वहां तक निकाल दो। किंतु जिनको शुद्ध ज्ञायक स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव नहीं जगा है उनको यह समस्त ज्ञान अभी कुज्ञान रूप है। अनुभव जगता है तो यह ज्ञान सम्यक रूप हो जाता है, यानी अनुभव के बाद कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परंतु ये जो आत्मा का अनुभव से जो दृढ़ता अभी आ गई है क्योंकि अभी उसका श्रद्धान सही हो गया, उसको श्रद्धान कहेंगे। इसी प्रकार श्रद्धान के संबंध में यह कुछ प्राथमिक वर्णन चल रहा है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष महल का प्रथम सोपान है, इसी संबंध में अब आगे कुछ कहेंगे। अभी इसी की बात चलेगी क्योंकि आत्मानुशासन है तो इसी की बात आगे बढ़ेगी। श्रद्धान में मूल दो तत्व जो विनय विद्वान लोग हैं, अर्थात आगम के मर्म को ग्रहण करने के पात्र जो बुद्धिमान जन हैं, उनके लिए सर्वप्रथम आराधने योग्य आराधना सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत नौ तत्वों का अथवा सात तत्वों का यथार्थ निश्चय करना सो सम्यक दर्शन है। प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ निर्णय, मुक्त होना है जीव को, हम आपको, जीव को किससे मुक्त होना है, जो जीव नहीं है उससे मुक्त होना है, क्योंकि अपने को या किसी भी पदार्थ को कष्ट में डाल सकने वाला निमित्त रूप से पर पदार्थ होता है। मैं जीव हूँ तो जो कोई अजीव हो ऐसा विशिष्ट पदार्थ ही मेरे बंधन का कारण हो सकता है, उससे हमें मुक्त होना है। मुझे मुक्त होना है और अजीव से मुक्त होना है। इस प्रकार दो तत्व तो प्रथम ही आ गए, जीव और अजीव। अब इसमें कर्म की बात ले लें या अन्य की बात, पहले दो तत्व उन्होंने नक्की कर दिया, आश्रव और बंध। इस जीव में अजीव आया है तभी तो ये जीव विपरीत आशय कर रहे हैं और ये अजीव जीव में बंध कर रहे हैं। यहाँ ये अजीव से कर्म समझो, आए बिना रहना किसे कहोगे, कोई आए नहीं और रह जाए यह कैसे होगा। जो कोई बाह्य तत्व ठहर जाए उसका आना तो पहले ही होता है, लेकिन आश्रय ने आना और बंधना ठहरना यानी बंधना, इस तरह से इसको समझा रहे, बिल्कुल सारी सिंपल भाषा में लौकिक भाषा में बोल रहे। यो जीव में अजीव का आना इसका नाम है आश्रव, आश्रव ने आश्रव। और जीव में अजीव का ठहरना इसका नाम है बंध। अब इस अजीव से इसे छुटकारा पाना है, यह है संसार की स्थिति, विपन्न परिस्थिति। इसमें दो तत्व आ गए, आश्रव और बंध। हाँ, जहाँ जहाँ आश्रव है वो ठीक करते जाना। यहाँ तक तो संसार मार्ग की बात कही गई है, अब मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। हम यहीं रुकते हैं क्योंकि आगे का पैराग्राफ भी बहुत बड़ा है। यानी सात तत्वों को एक एक को सिद्ध कर रहे हैं। हम अपनी भाषा में ऐसे कि मुझे सुखी होना है तो पहले मैं कौन हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, तो परिपूर्ण सुखी होना है, शुद्ध होना है तो मोक्ष तत्व सिद्ध किया। तो मोक्ष है उसका उपाय क्या है, संवर निजरा है। तो संवर निजरा है तो बंध आश्रय बंध के अभाव पूर्वक होती है। इस तरह से सात तत्व ही क्यों है उसकी सारी बात सिद्ध करते हैं। कल पढ़ेंगे आगे। जावानी